आयशा का सारा सच सामने आ गया था, इसलिए उसने अपने घुटने टेके और वो इशिका के सामने हाथ जोड़ते हुए मदद की भीख मांग रही थी। इशिका ने उसे अपनी बातों के जाल में फंसाया और उसका कन्फेशन करवाकर उसकी रिकॉर्डिंग क्रिस्टल को भेज दी थी। क्रिस्टल इस वक्त माहिर के पास थी और उसने सारी रिकॉर्डिंग माहिर को सुना दी थी। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद माहिर के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उसने धीरे से कहा, उसने मेरे बच्चे को मार दिया और मेरे साथ सिर्फ इसलिए थी ताकि टाइम पास कर सके। वो मेरा इस्तेमाल कर रही थी और मैं इसे प्यार समझता रहा। उसके चक्कर में मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया और जानबूझकर ऐसी हरकतें की जिसके बाद मुझे फांसी की सजा दी जाए। क्रिस्टल ने माहिर की आंखों में देखते हुए कहा, अब देख लो, तुम्हारा सो कॉल्ड प्यार ऐसा ही है। अभी भी टाइम है, सच एक्सेप्ट कर लो, वरना तुम बेवजह बर्बाद हो जाओगे और वो आज भी अच्छी लाइफ जीती रहेगी तुम्हारे बच्चे को मारने के बाद। माहिर की आंखों में इस वक्त आयशा के लिए नफरत थी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, उसके पेट में पल रहा बच्चा मेरा ही था। हम लोग होटल सनशाइन में अक्सर मिलते रहते थे। क्रिस्टल पहले से ही तैयार थी, उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी। जैसे ही माहिर ने होटल सनशाइन का नाम लिया, उसने जल्दी से किसी को मैसेज करके फुटेज निकलवाने को कहा। क्रिस्टल के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसने खुद को सख्त किया, वो आगे कुछ पूछ पाती उससे पहले माहिर गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हें एक और राज बताता हूँ, तुम इशिका को बता देना। इशिका ही राधिका सिंघानिया की बेटी है, जिसे बचपन में मालविका ने बदल दिया था। आयशा आदर्श सिंघानिया की असली बेटी नहीं, बल्कि नाजायज़ बेटी है, जिसे बदल दिया गया था। जैसे ही माहिर ने सच बताया, क्रिस्टल हैरान रह गई। उसने जल्दी से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो? वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम कह रही हो कि वो मालविका की बेटी है, इस हिसाब से तो वो तुम्हारी बहन हुई। माहिर ने तुरंत जवाब में कहा, हाँ, वो मेरे बुआ की बेटी है और इस वजह से मेरी बहन लगती है, लेकिन मैं इस बारे में पहले कुछ नहीं जानता था। मेरे लिए वो एक राजकुमारी की तरह थी जो मेरी हेल्प करती थी, मेरे लिए खाना लाती थी। मेरा बाप एक जवारी था, मैं उसकी मदद को प्यार समझ बैठा, जबकि सच तो ये था कि मेरा बाप उसे ब्लैकमेल कर रहा था, इस वजह से वो मेरे लिए ये सब कर रही थी। क्रिस्टल को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, माहिर खुद ही सब कुछ बताने लगा। वो आगे बोला, वो रात को मेरे पास आई थी और बोली कि मेरा बाप उसे ब्लैकमेल कर रहा है। हालांकि मैं कारण नहीं जानता था, लेकिन मैं उसे प्यार करता था और उसके चक्कर में मैंने उसे मार दिया। क्रिस्टल ने आगे पूछा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने आशीष को इस बात के लिए कैसे तैयार किया कि वो तुम्हारे हिसाब से रिकॉर्डिंग कर ले? क्या तुम लोगों ने इशिका को फंसाने का प्लान बनाया था? माहिर ने कहा, नहीं, उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने उन्हें कहा कि हमें खतरा हो सकता है, प्रैक्टिस करने का नाम लेकर मैं उनसे रिकॉर्डिंग करने में कामयाब रहा, लेकिन बाद में जब उन्होंने सच बताया कि आयशा मेरी बहन है, तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया। मारने वाला तो मैं वैसे भी था, लेकिन बीच में इशिका पहले ही आ गई। उसे मारने के बाद मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करके वहां बैठ गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मैं खिड़की से भाग गया था। बाद में मैं ऐसा दिखाने लगा जैसे इशिका ने गलती से मेरे बाप को मारा है और मैं उसके सामने मासूम बनने का दिखावा करता रहा। उस दिन मैं आयशा का सच बताना चाहता था, लेकिन जब पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया तो आयशा ने मुझे अपने प्रेग्नेंट होने का सच बताया। इसके बाद मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मेरे मन में एक ही बात थी, मैं जेल की सलाखों के पीछे रहूंगा, लेकिन मेरा बच्चा एक अच्छी जिंदगी बिताएगा। लेकिन उस घटिया लड़की ने मेरे बच्चे को मार डाला। माहिर ने शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुना दी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपना सर बेंच पर रखकर रो रहा था। एक पल के लिए क्रिस्टल को भी माहिर पर दया आने लगी। फिर उसने माहिर से पूछा, आयशा ये सच कब से जानती थी कि वो मालविका की बेटी है? बहुत पहले से, माहिर ने जवाब दिया। क्रिस्टल को सबूत के लिए जो रिकॉर्डिंग चाहिए थी वो उसे मिल चुकी थी। अब उसने माहिर को अकेले छोड़ दिया और वहां से तुरंत बाकी के सबूत कलेक्ट करने में लग गई। वहीं दूसरी तरफ इशिका और आयशा राधिका के कमरे में थे। आयशा इशिका को मनाने की कोशिश कर रही थी। जब उसे लगा कि इशिका नहीं मान रही है, तो वो खड़ी हुई और इशिका को दोनों कंधों से पकड़कर बोली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। मेरे माँ बाप ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारी वजह से उनके रिश्ते में दरार बनी रहती थी। मेरी मॉम मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती थी, क्या उनके लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती? जब वो होश में आएंगे और उन्हें मेरा सच पता चलेगा, तो कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। इशिका, मेरे लिए न सही, लेकिन मॉम के लिए तुम्हें झूठ बोलना होगा। आयशा ने इशिका की सबसे कमजोर कड़ी परिवार को निशाना बनाया था। इशिका ने आयशा के हाथों को झटका और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अगर तुम सच्ची साबित हुई तो मैं सबके सामने झूठी साबित हो जाऊंगी। तुम तो दुनिया की नजरों में ऊपर उठ जाऊंगी, लेकिन मेरा क्या? इतना कहकर इशिका वहां से जाने को हुई, तभी आयशा ने उसे पकड़ लिया था। वो जोर से चिल्लाकर बोली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। आयशा का साथ देते हुए मालविका ने कहा, इस लड़की और परिवार ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या तुम सारे एहसानों को भूल जाओगी? आज तुम्हें अमीर पति मिल गया है क्योंकि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, और वो पढ़ाई और खाने पीने के पैसे तुम्हें राधिका ने दिए थे। मालविका गुस्से में तेज आवाज में बोलने लगी, उसे ये तक एहसास नहीं था कि वहां राधिका बेहोश थी।
अब तक भले ही आदर्श का उनकी बातों की तरफ ध्यान ना हो, लेकिन उनके शोर सुनकर उसे लगा राधिका परेशान हो रही है, तो वो उठकर उनकी तरफ आने लगा। उसे अपनी तरफ आते देखकर मालविका घबरा गई। तभी आदर्श ने इशिका के पास जाकर उसके गाल पर एक कसकर तमाचा लगाया। आदर्श ने गुस्से में कहा, तुम्हें देख नहीं रहा मेरी पत्नी यहाँ आराम कर रही है, तुम तमाशा लगाने से बाज क्यों नहीं आती हो? इशिका को आदर्श के बर्ताव पर हैरानी हो रही थी। वो नम आंखों से बोली, यहाँ मेरी कोई गलती नहीं है, आपको देख नहीं रहा आयशा के पेट में किसी और का नाजायज बच्चा था और उसने खुद ही अपने बच्चे को मारने के बाद उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया है। आदर्श ने जवाब दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो राधिका और मेरी बेटी है, अगर वो कुछ गलत करती भी है तो हम सब सही कर देंगे। आदर्श की बात सुनकर इशिका हैरान रह गई। आयशा अगर किसी का मर्डर करके भी आती तो वो उसकी गलती नहीं निकालता। इशिका ने कुछ नहीं कहा और बाहर जाने लगी। आयशा को लगा कि जब इशिका उसकी नहीं सुन रही है तो वो रोते हुए मालविका की तरफ देखकर इशारा किया। अगर राजवंश फैमिली के कहने पर नक्श आयशा को तलाक दे देता तो वो किसी लायक नहीं रहती। मालविका ने मौके का फायदा उठाया और वहां फलों के बीच रखा हुआ चाकू उठाकर बोली, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अपनी जान ले लूंगी, सबको बताकर जाऊंगी कि तुमने अपनी माँ को मारा है। इशिका मालविका की तरफ पलटी और बोली, मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं मानती हूँ, सिंघानिया फैमिली ने मेरे ऊपर जितने भी पैसे खर्च किए हैं वो मैं उन्हें वापस लौटा चुकी हूँ, रही बात जान देने की तो बेशक मर जाओ लेकिन मुझे नहीं रोक पाओगी। इशिका के इरादे सख्त थे, वो दरवाजे की तरफ मुड़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला सामने रिपोर्टर खड़े थे, उनके साथ में उर्वशी और नक्श भी थे। उर्वशी ने इशिका की तरफ इशारा करके कहा, थोड़े दिनों पहले आप सब इससे इंट्रोड्यूस हुए थे, ये राजवंश एम्पायर के सीईओ अभिमन्यु राजवंश की पत्नी है, इसने जलन के मारे अपनी ही बहन यानी मेरी बहू के बच्चे को मार डाला, सबको पता चलना चाहिए कि राजवंश एम्पायर के सीईओ की पत्नी कितनी निर्दयी है।
इशिका हैरान रह गई, उसने नहीं सोचा था कि उर्वशी वहां रिपोर्टर लेकर आ जाएगी। प्रशांत और नकुल भी वहां पर आ गए। रिपोर्टर्स को देखकर उनके चेहरे पर ईविल स्माइल थी। अब वो अभिमन्यु की इमेज डाउन करके उसे सीईओ की पोजीशन से हटाने के लिए मजबूर कर सकते थे। वहीं रिपोर्टर्स ने अपने अपने माइक उठाए और अलग अलग सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। मिसेज राजवंश, क्या ये सच है? आपने अपने भतीजे की पत्नी और बच्चे को नुकसान क्यों पहुंचाया? क्या ये सब मिस्टर अभिमन्यु राजवंश के कहने पर किया गया था? वो लोग इशिका से अलग अलग तरह के सवाल पूछ रहे थे। इसी बीच क्रिस्टल वहां जल्दी से सारे सबूतों के साथ पहुंची। वही कार के पास अभी भी अभिमन्यु और केशव बहस कर रहे थे। पुलिस की गाड़ी को देखकर केशव ने हैरानी से कहा, यहां पुलिस किसने बुलाई होगी? अभिमन्यु ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, लेकिन अगर इशिका ने आयशा को धक्का दिया है तो पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व होना चाहिए, अब वही सच का पता लगाएगी। उसकी नज़र पुलिस की गाड़ी पर थी जहां से क्रिस्टल बाहर निकली थी। वो समझ गया था कि क्रिस्टल यहां इशिका को अरेस्ट करने नहीं बल्कि उसकी मदद के लिए आई हैं। तभी उसने ऐसा कहा। केशव ने गुस्से में कहा, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, यहां पुलिस आ जाए या फिर कोई और, उस लड़की ने गलती की है, उसकी सजा उसे देकर रहूंगा। अभिमन्यु ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा, ठीक है फिर ऊपर चलकर देख लेते हैं, सच का पता चल ही जाएगा। केशव वहां जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अभिमन्यु के चैलेंज करने पर उसने सिर हिलाया और फिर उसके साथ ऊपर जाने लगा। वही रिपोर्टर इशिका से सवाल जवाब कर रहे थे। इशिका को किसी का डर नहीं था, वो जवाब देते हुए बोली, ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे धक्का नहीं दिया है, दूसरी बात इसके पेट में पल रहा बच्चा नक्श का नहीं है, इसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और ये बच्चा भी उसी का है, अपने किए पर पर्दा डालने के लिए ये जानबूझकर टेबल के पास गिर गई ताकि इसका मिसकैरेज हो जाए। उर्वशी ने नकली आंसू दिखाते हुए कहा, ये झूठ बोल रही है, मेरी बहू को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इशिका के कहते ही रिपोर्टर आपस में फुसफुसाते हुए बात करने लगे। उनमें से एक ने कहा, क्या आपके पास कोई सबूत है कि मिसेज राजवंश किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी? लकीली तब तक पृथ्वी दूसरी रिपोर्ट के साथ वहां पहुंच चुका था। रिपोर्ट देखते ही आयशा और मालविका के चेहरे का रंग उड़ गया था, उन्हें डर लग रहा था। इशिका ने पृथ्वी से रिपोर्ट ली और फिर उर्वशी के हाथ में पकड़ा दी थी। उर्वशी ने रिपोर्ट देखी तो वो भी दंग रह गई। सच में आयशा के पेट में नक्श का बच्चा नहीं था, लेकिन इतने लोगों के सामने वो ये एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती थी। साथ ही वो ये इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकती थी कि रिपोर्ट झूठी है, हॉस्पिटल उन्हीं का था। उर्वशी रिपोर्ट देख रही थी तब मालविका ने धीरे से आयशा से कहा, आयशा हम अब क्या करें? क्या मैं उसके हाथ से रिपोर्ट छीन लूं और फिर से फाड़ दूं? गुस्से से आयशा ने मुठ्ठियां बांध कर ली थी। उसने नाम ही सिर हिलाकर कहा, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। उर्वशी गुस्से में आयशा की तरफ देख रही थी। आयशा जल्दी से उसके पास आई और बोली, मॉम मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी ही गलती है कि मैं अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पाई, जबकि मैं अच्छे से जानती थी कि ये मेरे पापा की गलती का नतीजा है। हमारे घर की नाजायज बेटी मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करेगी, फिर भी मैं अवेयर नहीं रही। उर्वशी फंस गई थी, वो रिपोर्टर के सामने सच नहीं बोल सकती थी। वो रिपोर्टर उर्वशी लेकर नहीं आई थी, बल्कि अपने प्लान के तहत आयशा ने बुलाए थे। नक्श आगे आया और रिपोर्ट लेने की कोशिश करते हुए बोला,
मॉम, मुझे देखने दीजिए, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उर्वशी ने जल्दी से रिपोर्ट को दूसरी तरफ किया और कहा, यकीन नहीं हो रहा कि तुम और अभिमन्यु मिलकर झूठी रिपोर्ट तक तैयार करवा लोगे। अस्पताल के सारे काम आजकल अभिमन्यु ही देख रहा है। डॉक्टर को भी अपनी फेवर में कर लिया तुम लोगों ने। उर्वशी आयशा का साथ दे रही थी। ये देखकर ऋषिका और आयशा दोनों को हैरानी हुई। नक्श ऋषिका से गुस्से में बोला, तुम्हारा ये सबूत छोटा साबित हो गया। इस रिपोर्ट के अलावा तुम्हारे पास और कोई सबूत है जिससे तुम साबित कर सको? अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस और रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहना। ऋषिका अभिमन्यु राजवंश। ऋषिका को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि क्रिस्टल वहां आ गई थी। वो उसकी तरफ आते हुए बोली, किसने कहा सबूत नहीं है? क्रिस्टल को देखकर ऋषिका को हैरानी हुई क्योंकि उसने एक घंटे पहले ही रिकॉर्डिंग भेजी थी और इतनी जल्दी क्रिस्टल सबूत के साथ वहां पहुंच भी गई थी। वहीं क्रिस्टल को देखकर आयशा के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। क्रिस्टल के आगे आते ही नक्श ने कहा, मतलब क्या है आपके कहने का ऑफिसर? आप यहां आई हैं तो इस लड़की को अरेस्ट कर लीजिए, इसकी वजह से हमारे बच्चे की जान गई है। क्रिस्टल ने सख्ती से कहा, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है मिस्टर राजवंश, वो बच्चा आपका नहीं था। बात को संभालने के लिए उर्वशी ने आगे आकर कहा, इंस्पेक्टर, आप इस तरह बिना सबूत के हमारे परिवार के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। आप जानती हैं ना कि राजवंश खानदान की कितनी इज्जत है। आयशा ने भी रोते हुए कहा, मुझे पहले ही पता था कि आप ऋषिका की फ्रेंड हैं, लेकिन कम से कम कानून का तो ख्याल कीजिए इंस्पेक्टर। आप इसका साथ देने के लिए पुलिस को धोखा देकर आ गई हैं। आपको इसे अरेस्ट करना चाहिए जबकि आप यहां मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। क्रिस्टल ने आयशा की तरफ देखकर सार्कास्टिकली सिर हिलाया और फिर कुछ तस्वीरें निकालकर रिपोर्टर्स के सामने दिखाते हुए कहा, ये होटल सनशाइन के सीसीटीवी कैमरा फुटेज के कुछ फोटो हैं और मेरे पास होटल में चेक इन और चेकआउट करने के रिकॉर्ड्स भी हैं। ये वहां माहिर दास के साथ जाती रहती थी। होटल सनशाइन और माहिर का नाम आने का मतलब आयशा समझ सकती थी। इसका मतलब माहिर ने सब सच बता दिया था। आयशा डर से कांपने लगी तो वहीं नक्श भी हैरान था। उर्वशी ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो और ये सबूत भी झूठे हैं। उर्वशी का साथ मिलते ही मालविका ने आगे आना चाहा। वो फिर से एक नए तमाशे के लिए तैयार थी और उसका चेहरा देखकर क्रिस्टल समझ गई थी। क्रिस्टल ने उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया और आगे कहा, ठीक है, ये फोटो झूठे हो सकते हैं लेकिन रिकॉर्डिंग तो झूठी नहीं हो सकती ना। क्रिस्टल ने अपना मोबाइल निकाला और मुस्कुराते हुए वो रिकॉर्डिंग सबके सामने प्ले कर दी थी जो थोड़ी देर पहले आयशा और ऋषिका के बीच बातचीत हुई थी। आयशा ने अपने मुंह से कबूल किया था कि वो नक्श से इसीलिए शादी करना चाहती थी क्योंकि वो राजवंश खानदान का बेटा है। माहिर के साथ उसके रिलेशन थे और वो बच्चा भी माहिर का ही था जिसको उसने मार डाला था। आयशा के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। हाँ, ना तो वो ये कह सकती थी कि ये सबूत झूठे हैं और ना ही ये है कि ऋषिका उसे फंसाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसने अपने मुंह से सब कुछ कबूल किया था।